بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir. اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین طالبان کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات کی خبریں کافی عرصے سے آ رہی ہیں. کبھی ان مذاکرات کی تائید کی جاتی ہے اور کبھی تردید. افغان حکومت بھی کبھی ان مذاکرات کی حمایت کرتی ہے اور کبھی ان پر اعتراض سامنے آتا ہے. اسی کے ساتھ قطر میں طالبان کے دفتر کا مسئلہ بھی کلیئر نہیں ہے اور اس سلسلے میں بھی ابہام پایا جاتا ہے. کبھی بتایا جاتا ہے کہ یہ دفتر امریکہ اور کابل حکومت کی حمایت سے کھولا گیا ہے اور کبھی اس کی بھی تردید کی جاتی ہے. اسی کے ساتھ ایک خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ نے طالبان کے سربراہ ملا عمر کا نام دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا ہے. اس سلسلے میں افغان حکومت نے کابل میں امریکی سفارت خانے سے وضاحت طلب کی ہے. تو آئیے چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر اندرابی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اندرابی صاحب السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اندرابی صاحب طالبان کے تعلق سے امریکہ کی پالیسی میں جو ابہام پایا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ ابہام جو ہے ایک طرح کا مینیجڈ ابہام ہے. یعنی یہ اصل میں ابہام نہیں ہے لیکن جی. اس کو ابہام کی ایک صورتحال پیدا کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات کا معاملہ ہے اور امریکہ کا جو طالبان کے ساتھ کسی تصفیے کا کسی ڈیل کا جو کا معاملہ ہے تو اس میں فریقین یہ چاہتے ہیں, خصوصاً امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جب کوئی چیز سامنے آئے تو وہ ایک حتمی چیز کے طور پر وہ ایک حتمی چیز ہو, وہ ایسا نہ ہو کہ پھر آج وہ کہیں اور پھر اس کی تردید کریں. اس لیے اس میں ابہام رکھا جاتا ہے جی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب کافی عرصے سے ایک مذاکرات کا سلسلہ چل نکلا ہے جس میں جرمنی بھی شامل ہے. جرمنی اور امریکہ اس میں خصوصاً شامل ہیں اور یہ مذاکرات کا سلسلہ چل نکلا ہے. لیکن اب لگتا ہے کہ یہ کسی حتمی منزل پر شاید پہنچ چکے ہیں. اس لیے کہ ابھی مولوی ذبیح اللہ جو طالبان کے ترجمان ہیں تو انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ہمارا ایک دفتر ہوگا دوحہ میں. یعنی قطر نے ان کو ایک دفتر وہاں فراہم کرنے کی ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ طے پایا ہے اور یہ دفتر اس لیے ہوگا کہ طالبان مذاکرات کر سکے لوگوں کے ساتھ. اور اس میں اصل میں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ امریکہ کا مسئلہ ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کر سکیں. تو یہ ابھی تک جو سناریو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات آلموسٹ کنفرم کی جا چکی ہے اور اس میں حامد کرزائی نے بھی اپنا وزن ڈالا ہے. حامد کرزائی پہلے یہ چاہتے تھے کہ یا تو سعودی عرب یا ترکی میں کہیں پہ ان کا دفتر ہو جہاں سے یہ مذاکرات کر سکیں. اس سے کہ یہ جو مقام ہے مذاکرات کا وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. یعنی مذاکرات کے عمل میں وہاں کی لوکل حکومت بھی اثر انداز ہوتی ہے. تو لہذا یہ پہلے کارزئی کی یہ پریفرنس تھی کہ سعودی عرب ہو یا ٹرکی ہو, लेकिन वो कतर के हक में नहीं था, लेकिन बहरहाल उसकी उतनी कोई इंडिपेंडेंट कोई विल तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उसने भी अब इसकी हामी भरी है, जो जो इतलात अभी तक हैं कि कतर में इनका एक दफ्तर हो। तो अब कतर में ये दफ्तर कायम होने से, अब देखिए ये शायद हम इसकी तफसील में बाद में भी जा सकें, लेकिन मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि इसके जो यानी इसके जो मुहरिकात हैं, ये कतर में दफ्तर और फिर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात, इसमें कोई नई हैरान कुन कोई बात नहीं है। ये बस एक मैटर ऑफ टाइम था, एक वक्त का मसला था कि ये मुज़ाकरात हूँ, वरना ये तो हमेशा मालूम था कि अमेरिका तालिबान के साथ मुज़ाकरात करेगा और वो मामला तय होगा, इसलिए कि तालिबान जो पहले जब उनकी इब्तिदा हुई उस वक्त पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और उस वक्त का डिफेंस मिनिस्टर नसीरुल्ला बाबर था, जो अब नहीं है, जो इंतकाल कर गए हैं, तो नसीरुल्ला बाबर के उसकी निगरानी में तालिबान, उसने अपने कुछ मजहबी जमातों वगैरह उनको मिला के जो है वो तालिबान को पैदा किया गया, और तालिबान को पैदा करने में अमेरिका का बिल्कुल एक उस वक्त एक साथ था, यानी अमेरिका ऑन बोर्ड था। तो लिहाजा ये कोई ऐसा मसला नहीं था, ये मालूम था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मुज़ाकरात तो हो ही जाएंगे। अलबत्ता इसमें कई टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जैसे अमेरिका ने ये ज़रा इसका एक दूसरा पहलू है, लेकिन बहुत ही इसके साथ लिंक्ड और बहुत ही अहम है। अमेरिका ने हाल ही में अमेरिका का पाकिस्तान के साथ कुछ मामला बिगड़ रहा है
जी।
और उसकी कई वजूहात हैं, और अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान की जो जितनी लेवरेज है इस तालिबान के मामले में उसको ज़रा कम किया जाए, पाकिस्तान के जितने ऑप्शंस हैं उनको ज़रा कम किया जाए। अब अगर कतर में अमेरिका तालिबान के साथ मामला निभाता है तो उसमें नेचुरली पाकिस्तान का रोल ज़रा कम होगा, पाकिस्तान की से कम होगी, तो ये भी उसमें एक अहम चीज़ है। तो अब देखते हैं कि क्या होगा और कैसे मुज़ाकरात डेवलप होंगे, लेकिन ये ऑलमोस्ट अब कंफर्म्ड है कि कतर में एक दफ्तर जो है इसके लिए खोला गया है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारे दिल्ली स्टूडियो में हिंदुस्तान के मुमताज़ तजिया निगार और हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकज़ी रहनुमा शमीम फैज़ी साहब मौजूद हैं। आइए देखते हैं उनकी राय इस सिलसिले में क्या है। फैज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जी। फैजी साहब, तालिबान के ताल्लुक से अमेरिका की पॉलिसी शफाफ नहीं है, इस बारे में आपका तज़िया क्या है?
जी देखिए, ना तो मैं इसे गैर शफाफ पॉलिसी मानता हूं
जी,
और ना ही मुझे कोई इबहाम है। मुझे पहले से अंदाजा है कि अमरीकी जिसे अपना कौमी मफाद कहते हैं उसके हुसूल के लिए किसी भी हद तक कहीं भी जा सकते हैं। तालिबान पैदा उन्होंने किए थे, जैसे अभी इंदिराजी साहब कह रहे थे
जी,
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार के ज़माने में नहीं, उससे पहले ही उन्होंने ऐसे अनासिर को बढ़ावा देना शुरू किया था जो बाद में उनका दमछल्ला बन सके। दरअसल अभी दो दिन पहले बराक ओबामा खुद ये कह चुके हैं कि जनूबी एशिया में और इस पूरे एशियाई खित्ते में वो अमेरिका के मफादात के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, और वो इस हद तक गए कि वो कहते हैं कि अगर हमारी कांग्रेस ने इस खित्ते के लिए बजट नहीं मंजूर किया तो भी उनका इंतज़ामिया यहाँ असरअंदाज और मौसर तरीके से अपनी मुदाखलत जारी रखेगा। ये कोई नई बात नहीं है। एक बात और समझ लीजिए कि जहाँ तक अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी कहता है तो नारे के तौर पर जमहूरियत, अमन और बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर जिसे अमेरिकी इंतज़ामिया अपना कौमी मफाद करार देता है उसके मुताबिक होती है। और ये बात तो अब छुपी नहीं रही कि अमेरिका में कौमी मफाद का मतलब अमेरिकी आवाम का मफाद नहीं होता है बल्कि 1% लोगों का मफाद होता है। इसलिए आज खुद अमेरिका के अंदर नारा है कि हम 99% हैं और हम 1% के खिलाफ जाएंगे। और ये सिर्फ बात अफगानिस्तान तक महदूद नहीं है। यमन में अवामी उभार हुआ, यमन में मुख्तलिफ किस्म की ताकतें उभर कर सामने आईं, उनमें से कुछ ताकतें जो ज़्यादा मौसर तरीके से अब्दुल्ला साले के खिलाफ मैदान में थी, उनके बारे में ये भी मशहूर था कि शायद ये सऊदी अरब के खिलाफ भी जाएंगी। इसलिए अब अमेरिका और सऊदी अरब की कोशिश ये है कि यमन में उन्हीं ताकतों से समझौता कर लिया जाए जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए वो पिछले 10 सालों से साले अब्दुल्ला को अरबों डॉलर दिया करते थे। तो अमेरिका अपने कौमी मफाद के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, कहीं भी जा सकता है। इसलिए इसमें ना तो कोई इबहाम है और ना गैर शफाफियत है।
जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फैजी साहब। और नाज़रीन, टेलीफोन लाइन के जरिए हमारा राबिता बरकरार हुआ है पाकिस्तान के सीनियर तजिया निगार यहिया बिन जकरिया साहब से। यहिया बिन जकरिया साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
जनाब, तालिबान के ताल्लुक से अमरीकी पॉलिसी आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है। अमरीका की पॉलिसी तालिबान के बारे में है क्या? वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करना चाहता है, तालिबान को ख़त्म करना चाहता है, तालिबान को इख्तदार से दूर रखना चाहता है या इख्तदार में लाना चाहता है?
देखिए, 10 साल गुजर चुके हैं 9/11 के बाद से, और इन 10 बरसों में अफगानिस्तान के हवाले से अमरीका अपना हदफ हासिल नहीं कर सका।
जी।
दूसरी तरफ सदर बाराक ओबामा जब बरसर इख्तदार आए थे तो इंतखाबी मुहिम में उन्होंने ऐलान किया था कि वो तब्दीली लेकर आएंगे। उन्होंने रिपब्लिकन्स को अफगानिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार करार देते हुए उनकी पॉलिसी पर तनकीद की थी, और जितनी तनकीदें वॉर ऑन टेरर के हवाले से अमरीका पर हो रही थी उसके सिलसिले में उन्होंने पॉलिसी तब्दील करने का ऐलान किया था, जिसमें खास तौर पर ग्वांतानामो बे और अमरीका की खुफिया जेलों के बंद करने का ऐलान शामिल था, लेकिन वो ये काम नहीं कर सके। असल मसला यह है कि अमरीका को अफगानिस्तान से वापस जाना नहीं है, उसके वसी तर मनसूबे में अफगानिस्तान पर कब्जा लाजमी है, लेकिन वो जंगी पैमाने पर अफगानिस्तान को कंट्रोल करने में नाकाम हो गया है। अब ये बात बिल्कुल वाजे हो गई है कि अफगानिस्तान के अंदर दो ही कुव्वतें हैं, एक तरफ अमरीका है और दूसरी तरफ तालिबान है। एक तरफ अमरीका और उसके इत्तेहादी हैं और दूसरी तरफ तालिबान है कि जिनका अमलन तस्वीराती और सियासी और जंगी और बैन अल-अक़वामी हालात में बज़ाहिर कोई हामी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अमरीका तालिबान को शिकस्त देने में कामयाब नहीं हो सका और न ही वो कोई ऐसा मुतबादल निज़ाम कायम करने में कामयाब हो सका कि अमरीका अपनी फतह का ऐलान करे और लोग अपनी कौम को मुतमईन करे और ये कहे कि अब जो है अमरीकी फौजी अफगानिस्तान से निकलने के लिए तैयार हैं। इस सिलसिले में उसने अब बिल आखिर जाहिर है कि जंगों का लाजमी नतीजा जो है वो मुज़ाकरात की सूरत में पेश आता है। अमरीका ने तालिबान से मुज़ाकरात की बात की है और इन मुज़ाकरात की बात के नतीजे में तालिबान की क़यादत ने मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। इस सिलसिले में ये बात बिल्कुल वाज़े रहे कि तालिबान ने अभी तक किसी किस्म की जंगबंदी का ऐलान नहीं किया। मुज़ाकरात इस दरमियान में भी गैर रस्मी तौर पर पहले भी जारी रहे थे। इस सिलसिले में जो है वो कैदियों के तबादले का मसला उनके पास दरमियान में मौजूद है, लेकिन अभी तक कोई वाज़े सूरत हाल सामने नहीं आई। जाहिर है कि अमरीका की असल हिकमत अमली यह है कि वो अफगानिस्तान की जंग के हवाले से अफगानों को तफरीक और तकसीम करे और खास तौर पर जो मुजाहमत है उसको वो किसी तरीके से उस पर काबू पा ले। अब जाहिर बात है कि ये हम देखेंगे कि इस नए मरहले पर तालिबान किस किरदार का मुजाहरा करते हैं, ये अब उनका इम्तिहान भी है, इसलिए कि अब वो मुज़ाकरात की मेज पर आ रहे हैं और जाहिर बात है कि अमरीका के अंदर ये सलाहियत है कि वो अपनी नाकामी को भी कामयाबी के अंदर बदलने की इस्तेदाद रखता है। इस सिलसिले में चूंकि उसके जो से लड़ने वाले लोग हैं उनके पास सिवाय शौक शहादत और जज्बे जहाद के अलावा कोई चीज नहीं है और उनकी जो है वो कोई मददगार भी नहीं है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल वाजह है कि खुद अमरीका और इसके इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, खुद इस खित्ते की सियासत जो है वो तब्दील हो चुकी है और वो सियासत जो है वो अमरीका के हक में नहीं है। इस सिलसिले के में अफगानिस्तान के जंग के हवाले से अमरीका का सबसे अहम मददगार और इत्तेहादी पाकिस्तान है। पाकिस्तान और अमरीका की फौजी क्यादत के दरमियान अहदाफ और मकासद के तसादुम भी दुनिया के सामने आ चुका है और अब ये बात मुमकिन नहीं रही है कि ये सूरत हाल उसी तरीके से चले जिस तरीके से अब तक गुज़श्ता 10 वर्षों के अंदर चली आ रही है। तो इस सिलसिले में तालिबान को काबू में करने के लिए और बिलखसूस अफगानिस्तान की मुजाहमत को खत्म करने के लिए अमरीका ने ये हिकमत अमली अख्तियार की है। अब हम ये देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलता है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया
जी जनाब,
लाइन पे मौजूद रहिएगा। अंद्राबी साहब, एक खबर ये भी है जिस पर अफगान हुकूमत ने किसी हद तक एतराज भी किया है कि अमेरिका ने तालिबान के सरबराह मुल्ला उमर का नाम दहशतगर्दों की फेहरिस्त और ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
इस बारे में मेरी अपने कोई ठोस मालूमात नहीं है कि क्या उन्होंने वो निकाला है कि नहीं। मैंने बस इसी तरह टेलीविज़न चैनल से सुना है कि वो उनका नाम खारिज किया गया है, लेकिन लेकिन वो बहरहाल उतना अहम मसला नहीं है। उनके कुछ ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला अभी जो चल रहा था तो उसमें उनका ये मुतालबा था तालिबान का कि उनके कुछ साथी जो गुआंटानामो बे में हैं उनको रिहा किया जाए और उनको रिहा करके वो चाहते थे कि उनको कतर ही भेजा जाए, लेकिन अभी हामिद कारज़ाई अब इसरार कर रहे हैं कि उनको अफगानिस्तान भेजा जाए। तो इस तरह की लेकिन मैं इसको उतना वजन नहीं दे रहा हूँ इससे कि ये उतनी बुनियादी कोई ऐसी डिमांड्स नहीं है जो अमेरिका न माने। और असल में ये जो अमेरिका का मूव है, देखिए हमें इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी हमें इसमें बहुत ही क्लैरिटी, अपने जहन को बिल्कुल साफ होना चाहिए इस सिलसिले में कि अमेरिका जो अपनी इंटरेस्ट देख रहा है, जैसे दिल्ली में आपके मेहमान फरमा रहे थे, अमेरिका जो अपनी इंटरेस्ट देख रहा है वो असल में दुनिया पे अपना एक कॉम्प्रेंसिव कंट्रोल, एक फुल कंट्रोल, वो ये कि वो दुनिया में उसकी बराबर दसरस रहे, वो दुनिया में जहाँ चाहे जो करना चाहे वो करने के काबिल हो। तो ये इस वक्त का वर्ल्ड ऑर्डर तो यही है। अब इसका तकाजा अमेरिका ने ये समझा है कि मुख्तलिफ जगहों पे डायरेक्ट प्रेजेंस हो, यानी उसने काफ़ी वक्त तक तो एक नियो कलोनियल जिसको हम कहते हैं, यानी एक इनडायरेक्ट प्रेजेंस वहाँ की हुकूमतों के ज़रिए, मसलन हुस्नी मुबारक के ज़रिए इजिप्ट में प्रेजेंस, शाह ईरान के ज़रिए ईरान में प्रेजेंस, लेकिन पिछले 30-35 सालों का तजुर्बा उसको ये बताता है कि ये प्रेजेंस काम नहीं करती है, उसको डायरेक्ट बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी डायरेक्ट उसको वहाँ इलाकों में जाना चाहिए और रहना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूँ कि वो अफगानिस्तान में रहता, वो वहाँ से जाता नहीं, यानी वो वहाँ से जाने की बात भी नहीं करता। लेकिन अमेरिका और यूरोप में जो हालात पैदा हो रहे हैं ये असल में बुनियादी मुहर्रिक है उनको ये इस बात पर गौर करवाने के लिए कि हमें अपने कमिटमेंट्स को ज़रा कम करना चाहिए। इस सिलसिले में मैं आपको हवाला दूंगा, वो एक जो वो खुद अफगानी हैं जालम खलीलजाद, वो अमेरिका में बड़े दानिश्वर हैं और अफगानी हैं, ताजिक हैं, तो उनका एक ख़ास इनपुट रहता है अमेरिका की अफगान पॉलिसी में। तो अभी उन्होंने अमेरिका के एक मोतबर जरीदे में लिखा था कि अमेरिका को जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन और कोई अल्टरनेटिव नहीं है इससे कि अमेरिका के जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हालात जो हो रहे हैं वो इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि अमेरिका वहां से निकले। तो लिहाजा असल में वो मुहर्रिक है और उसके लिए उसको जाना है। मुझे तो इसमें ज़्यादा कोई यानी मैं तो इसमें ज़्यादा कोई मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कोई सबस्टेंस नज़र नहीं आ रहा है कि अफगान की अमेरिका तालिबान के साथ क्यों इतना जंग करता रहे। आखिर इनके इंटरेस्ट्स का कहाँ पे कोलिजन है? अगर तालिबान यानी अगर अमेरिका अफगानिस्तान से निकले तो उसको तालिबान के साथ क्या प्रॉब्लम है? अगर अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हो तो अमेरिका को उसमें क्या मसला है? यानी तालिबान की हुकूमत तो अगर आप उसको मजहबी अंदाज से देखें तो वो एक सऊदी अरब का एक्सटेंशन है और सऊदी अरब तो अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा हलीफ है, उसका एजेंट है। तो अगर उसको सऊदी अरब के साथ प्रॉब्लम नहीं है तो तालिबान के साथ क्या होगी? इन तालिबान के साथ यही प्रॉब्लम होगी अगर वो अमेरिका को अस्करी उस सतह पर अगर उसको कन्फ्रंट करें, अगर वो उसको अफगानिस्तान से भगाने की कोशिश करें। लेकिन अगर वो महज अफगानिस्तान पे हुकूमत करें तो अमेरिका को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो क्यों? यानी ये एक सवाल है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है कि ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है कि मुल्ला उमर का नाम खारिज किया गया या क्या ये शराइत वगैरह जो है ये एक ये मैंने आपसे कहा कि ये मुज़ाकरात जो हैं बहुत ही ये स्टेबल नहीं है। ये इनका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज कुछ हुआ कल तरदीद हुई। तो लिहाजा ये चाहते हैं कि ये किसी फर्म नतीजे पर पहुँचे और उसके लिए ये एक शराइत का जो है एक महज एक हवा खड़ा की जा रही है, इसमें उतना बड़ा कोई वजन नहीं है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फैजी साहब, जनाब अमेरिका के मफाद का जब तकाजा हुआ तो अमेरिका ने एक तालिबान जैसा एक शिद्दत पसंद इंतहा पसंद ग्रोह तश्कील दिया, उसकी पुष्टपनाही की, हुकूमत तक पहुंचाया। फिर बीच में उसके मफाद का तकाजा ये रहा कि इस ग्रोह को हटाया जाए, तो उसने इसको हटा दिया और अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, कब्जा कर लिया। अब अगर वो तालिबान के साथ मुज़ाकिरात कर रहा है, दोबारा उसको इख्तदार में ला रहा है, तो क्या अब ये समझा जाए कि अब अमरीकी मफाद का तकाजा ये है कि दोबारा इंतहा पसंद और शिद्दत पसंद अफराद अफगानिस्तान में हुकूमत में आए? क्या फैजी साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंची? जी अब पहुंच रही आवाज या नहीं?
जी
जी मेरा सवाल यह था कि अब अगर अमेरिका तालिबान के साथ मुज़ाकिरात कर रहा है तो क्या वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि उसका मुफाद इस बात में है कि अफगानिस्तान में इंतहा पसंदों की हुकूमत आए?
देखिए एक बात पहले समझ लीजिए
जी
कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने का फैसला किया वो भी उनकी वसीतर हिकमत अमली का हिस्सा था
जी।
आज भी अगर वो अफगानिस्तान से अपनी फौजें हटा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान को अपने दायरे असर से खारिज कर रहे हैं या उसे भूल जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान उनके लिए जोग्राफियाई और सियासी लिहाज से इंतहाई अहम खत्ता है, ख़ास तौर से जिस तरह से उन्होंने ईरान के खिलाफ मौकफ इख्तियार किया है अमरीकियों ने, उसके पेश नज़र तो वो किसी हालत में ये कबूल नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान में ऐसे लोग बरतर इकतदार आए जो अमरीका मुखालिफ हों। इस बात को पहले वाजे हो जाना चाहिए। अब तालिबान में उनको ऐसे लोगों की तलाश है जो मजहबी तौर पर इंतहा पसंद हो, शिद्दत पसंद हो, उससे अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो अमेरिका नवाज हो जाते हैं या अमेरिकी अहकाम के तावेदार होते हैं तो अमेरिका को इस पर कोई एतराज नहीं होगा, और शायद मुल्ला उमर का नाम शिद्दत पसंदों या दहशतगर्दों की फहरिस्त से खारिज करने का एक मकसद तालिबान के दरमियान पानी नापने की कोशिश हो सकती है। वो शायद ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन तालिबान के कौन से अनासिर हैं जो अमेरिका के लिए ज़्यादा सूदमंद होंगे, और वो कोई भी फैसला इसी बुनियाद पर करेंगे। एक बात और वाज़े हो जानी चाहिए कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में हामिद करदई कहीं नहीं होंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि मुज़ाकरात के नतीजे में तालिबान और इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो हुक्मरान हैं उनके दरमियान भी कोई समझौता, कोई मुआहदा, कोई बाहमी फहम पैदा होगी तो ये गलत है। जब अमेरिका को लगेगा कि अमेरिका नवाज तालिबान जो उसके मफादात के ताबे हों वो अगर अब दस्तियाब हो जाते हैं तो हमीद करदई उनके लिए टॉयलेट पेपर से ज़्यादा की हैसियत नहीं रखेंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। यहिया बिन ज़करिया साहब
जी,
जनाब ये जो ये मुज़ाकरात का जो प्रोसेस चल रहा है इसमें दो बातें जो हैं वो यानी एक नुक्ता काफ़ी अहम है जिसकी तरफ इशारा किया है फैजी साहब ने भी, और इससे पहले एक इशारा दिया था हमारे अंदराबी साहब ने कि आप ये देखें कि इस वक्त अफ़गानिस्तान के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से अमेरिका के इख्तलाफात हो चुके हैं, और अंदराबी साहब का ख्याल यह है कि कतर में तालिबान का दफ्तर जो खोला जा रहा है उसका मकसद ये है कि जो मुज़ाकरात हों तालिबान के के साथ अफ़गानिस्तान के बारे में उनमें पाकिस्तान का कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो, पाकिस्तान का असरात को कम से कम किया जा सके। दूसरी तरफ अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान, अफ़गान सदर के तर्जुमान का कहना यह है कि जो मुज़ाकरात का प्रोसेस चल रहा है इसमें अफ़गान हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया है, तो अमेरिका खुद अफ़गानिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान दोनों को किनारे रख के तालिबान के साथ अगर मुज़ाकरात करना चाहता है तो क्या ये मुज़ाकरात मसले अफ़गानिस्तान के हल में जिस तरह से भी अमेरिका चाहता हो मददगार हो सकते हैं?
देखिए अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान के मसले हल नहीं करना चाहता, बल्कि असल मसला ये है कि जिस पर से वो पर्दा उठाना चाहता है कि उसे बदतरीन शिकस्त हो चुकी है, और इस सिलसिले में वो अफगानिस्तान के अंदर ऐसा निजाम हुकूमत कायम करने में नाकाम हो गया कि जिसको वो अपने अख्तियार मुंतकिल कर दे और उसके फौजियों की हलाकतों का सिलसिला बंद हो जाए, ये सिलसिला नाकाम हो गया। पहले मरहले पर यह कोशिश अमरीका ने हामिद करजई के जरिए की थी, जिसके लिए बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब सामने आए थे। बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब के कत्ल के बाद ये सिलसिला जो है वो नाकाम हो गया। ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए कि जैसे हमें पहले भी कही थी बात कि बहुत सारे फरीकों में बुनियादी फरीक अमेरिका है और दूसरी तरफ तालिबान है। अब तक अमेरिका जो है वो तालिबान को कोई हैसियत देने को तैयार नहीं था। अपनी वो बदतरीन शिकस्त की वजह से उसने तालिबान के वजूद को तस्लीम करने से के लिए इनकार किया। तालिबान के बाज नुमाइंदे काबुल के अंदर वो पहले से मौजूद थे और जिनमें उनके साबिक वजीर खारजा भी थे, लेकिन ऐसे तमाम अफराद को तालिबान के अमीर मुल्ला उमर ने अपना सरकारी नुमाइंदा तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो दरमियान में बहरहाल मौजूद थे और इस सिलसिले में मुज़ाकरात किसी ना किसी मरहले पर जो है वो जारी थे। अब उसके बाद बिल आखिर जब बराह रास्त अमरीका ने तालिबान से बात करने का इशारा दिया तो ये दरअसल ये उनकी ऐलान शिकस्त है। इसके जवाब में तालिबान ने अपने मौकफ को बरकरार रखते हुए मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार किया। अब मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार करने के बाद उसकी अमली कुछ शक्ल की जरूरत थी। इस सिलसिले में इस बात की जरूरत महसूस हुई कि तालिबान का एक सियासी दफ्तर होना चाहिए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के नाम पेश होने के बाद जो है वो कतर का नाम जो है वो पेश हुआ है। उस नाम से तालिबान ने अपनी फिलहाल रजामंदी का इजहार कर दिया है। अभी मुझे नहीं मालूम कि इस सिलसिले में कोई अमली पेशरफ हुई है कि नहीं हुई है। हमें इस बात को भी याद रखना चाहिए कि कतर जो है वो सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, यानी अब किसी ना किसी तरीके से बाकायदा तालिबान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। इस सिलसिले में अब तक तालिबान ने जो मौकफ बरकरार रखा हुआ है वो ये है कि वो गैर मुल्की फौजी इनखला के मुतालबे पर कायम है, और वो ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के मसले की जड़ ये है कि अफगानिस्तान से अमरीका और उसके इत्तेहादी फौजों का इनखला हो। दूसरी तरफ अभी तक तालिबान ने किसी किस्म की जंगबंदी का कोई ऐलान नहीं हुआ है, और गुज़श्ता एक बरसों के अंदर ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं कि जिसने अमरीका को परेशान किया है। अब इस सिलसिले में जाहिर बात है कि हामिद करजई और पाकिस्तान की हुकूमत दोनों जो है वो एक अहम किरदार हैं, उनको वो नजरअंदाज करना भी चाहते हैं और उनको वो नजरअंदाज कर भी नहीं सकते। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि अब मुस्तकबिल में हामिद करजई का जो है वो कोई वजूद नहीं रहेगा, इसलिए कि हामिद करजई की हुकूमत के बावजूद भी काबुल के अंदर भी कोई ऐसी सियासी राय नहीं बन सकी है जो इस बात को कबूल कर ले कि हाँ अमरीकी फौज का वजूद कबूल करने के लिए या उनका किसी किस्म का जंगी रोल कबूल करने के लिए वो तैयार हों। इस सिलसिले में खुद काबुल की राय अम्मा और वो लोग के जो अमरीकन कैंप के साथ बैठे हुए हैं वो इस मौकफ को कबूल करने और इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। इस सिलसिले में बोन कॉन्फ्रेंस से लेकर और लोया जिरगा तक कोई ऐसी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी कि जिसमें अमरीका की मौजूदगी और उनके फौजी अड्डों को लेजिटिमेसी जो है वो दी जा सके। अब उसके बाद ये मरहला तालिबान के साथ इस मरहले का आगाज हुआ है। अब तक जो बात सामने आई है वो सिर्फ ये आई है कि तालिबान ने कतर में सियासी दफ्तर कायम करने पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। इसके बाद देखें कि क्या होता है, ये हम देखेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया अंदराबी साहब। फैजी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई होगी और फिर यही अपन ज़करिया साहब की भी कि फैजी साहब ने तो साफ और वाज़े लफ्ज़ों में कहा है कि तालिबान के साथ जो भी प्रोसेस चल रहा है और आइंदा का जो भी सिस्टम अमेरिका के मद्देनज़र है उसमें हामिद करजई की कोई जगह नहीं है, और हामिद करजई की तरफ से जो बयानात आए हैं मुज़ाकरात के हवाले से, कतर में दफ्तर के हवाले से भी, अभी उनके तर्जुमान का, हामिद करजई के तर्जुमान का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने कतर में तालिबान का जो दफ्तर खोला जा रहा है उसकी हिमायत नहीं की है, हमने ये कहा है कि हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, मुखालिफत न करना हिमायत के मुतरादिफ नहीं है। इसी के साथ उनका यह भी कहना है शिकायत के लहजे में कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें करजई हुकूमत को, काबुल हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया गया है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि अमेरिका, मेरा वही सवाल है जो यहिया बिन ज़करिया साहब से था कि पाकिस्तान को वो पहले ही नज़रअंदाज कर चुका है पाकिस्तान में और अमेरिका में जो कशीदगी जा रही है जारी है, आपने भी उस तरफ इशारा किया कि कतर में दफ्तर इसीलिए खोला गया कि पाकिस्तान के असरात कम से कम रहे, पाकिस्तान और काबुल, इस्लामाबाद और काबुल को साइडलाइन करके अलग हटा के अफगानिस्तान के बारे में कोई फैसला किया जा सकता है?
जी यानी अगर अगर इसका बिल्कुल एक पॉइंट ब्लैंक जवाब देना हो तो मैं कहूंगा कि किया जा सकता है, लेकिन आप जरा ये देखें कि जो मैंने अभी कहा इससे पहले कि अमेरिका का असल मफाद जो वो देखते हैं, जो उनकी सेल्फ परसीव्ड जो उनकी इंटरेस्ट है, वो तो ये चाहें कि वो अफगानिस्तान से बिल्कुल ना जाएं, लेकिन अगर अब हालात उनको अफगानिस्तान से जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो उनका इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है, जो हदफ है, वो ये है कि वो अपने जाने के वक्त वहाँ पर कोई ऐसा अरेंजमेंट करके जाएँ जिससे वो वहाँ के जो उनके अहदाफ हैं उससे वो हासिल कर सकें। तो उसमें हमें ज़रा एक दूसरे ढंग में सोचना है। उसमें मैं बिल्कुल इत्फाक़ करता हूँ आपके दिल्ली के जो मेहमान फैजी साहब हैं कि उसमें उनकी कोई कंसिड्रेशन नहीं है कि कौन शिद्दत पसंद, कौन इंतहा पसंद, कौन किस फिका, कौन किस उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन कितना, किसकी दाढ़ी कितनी लंबी है, ये बातें उसके लिए बिल्कुल गैर जरूरी हैं। उसके लिए जो पैमाना है वो ये है कि अमेरिका जो अफगानिस्तान में जिन चंद चीज़ों को इंश्योर करना चाहता है, जिन चंद बातों को यकीनी बनाना चाहता है, आइंदा का रेजीम, कारजाई का रेजीम तो बहरहाल जो भी हो वो स्टेबल नहीं है। उसकी अफगान पैलेस, प्रेसिडेंशियल पैलेस से बाहर कोई उसका, अगर आप कारजाई को कहें कि भाई आप वहाँ जाएं कंधार चले जाएं तो वो कंधार नहीं जा सकता, हालांकि प्रेसिडेंट है मुल्क का, तो उसकी गिरफ्त तो अपने उस महल तक महदूद है। तो लिहाजा उसका मसला तो छोड़िए आप, तो लेकिन अमेरिका अगर वहाँ से जाए तो वो चाहता है कि अफगानिस्तान में एक डिस्पेंसेशन, एक अरेंजमेंट करके चला जाए जो अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सके, और अमेरिका की जो कुछ बुनियादी बातें हैं उनको यकीनी बनाया जा सके। उन बुनियादी बातों में मैं एक दो का जिक्र करूँगा। एक तो यह है कि वहाँ का रेजीम जो है वो एंटी ईरान होना चाहिए, वो ईरान के साथ कोई कॉपरेशन की बात तो नहीं, वो एंटी ईरान होना चाहिए, ये एक बात है। इसलिए कि ईरान का मसला इस वक्त अमेरिका की खारजा पॉलिसी का सरफहरिस्त का इशू है और वो हर चीज़ में इसी बात को मद्देनजर रखते हैं, तो लिहाजा ये पहली प्रायोरिटी है कि वो ईरान मुखालिफ होना चाहिए। और दूसरी बात जो है वो अब ये बनी है कि अमेरिका के जो हालिया दिनों में, हालिया अभी महीनों में और इस पिछले चंद वक्त से जो अमेरिका की एक नई रिलेशनशिप इंडिया के साथ बनी है और न्यूक्लियर डील के बाद, और इंडिया ने वो और बराक ओबामा का इंडिया का आना हुआ और वहाँ पार्लियामेंट में जो उसने तकरीर भी की, तो अमेरिका इंडिया को ज़रा अपनी उसकी जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है ईरान के खिलाफ, तो उस सिलसिले में वो इंडिया को ज़रा खबरदार करना चाहता है कि वो भी उसके किसी हद तक शाना बशाना खड़ा हो, और वो अमेरिका और इंडिया के दरमियान एक स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप अभी कुछ वक्त से बिल्डअप हो रही है। तो लेकिन उसमें इंडिया का ये मुतालबा रहा है कि अगर वो अमेरिका के काम आए तो अमेरिका को उसको इस काम आना चाहिए कि पाकिस्तान और तालिबान की जो इंडिया मुखालिफ सरगर्मियां हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए एक दूसरी डिमांड अमेरिका की ये होगी, एक दूसरी बात वो यकीनी बनाना चाहेगा कि तालिबान का जो रजीम अफगानिस्तान में आए वो इंडिया मुखालिफ भी ना हो, ये भी एक दूसरी चीज़ है। तो इन चंद बातों को अमेरिका इंश्योर करके, और ये बात भी तीसरी जो आखिरी बात है वो ये है कि तालिबान का जो बाकी लोगों के साथ, शुमाली अफगानिस्तान के साथ, ताजिक्स के साथ जो है वो भी मामला कुछ तय पाए, और ये भी अमेरिका इंश्योर करेगा। यानी अमेरिका इन शॉर्ट ये इंश्योर करेगा कि उसके जाने के बाद अफगानिस्तान में एक अफगानिस्तान को कंट्रोल करने वाली हुकूमत हो जो अमेरिका के मफादात को आगे बढ़ा सके, और उन मफादात में मैंने एक दो का जिक्र किया है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया फैजी साहब। अफगानिस्तान के ताल्लुक से अमेरिका की जो मंसूबा बंदी है उसमें हिंदुस्तान की जगह क्या है?
देखिए, हिंदुस्तान के अपने मफादात हैं। हिंदुस्तान समझता है कि एक मुस्तहकम अफ़गानिस्तान मग़रिबी एशिया तक नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता तक उसके ताल्लुकात में गैर मामूली अहमियत का हामिल है। लेकिन ये हुकूमत की समझदारी हो सकती है कि अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके हम इस खत्ते में कोई मुकाम, कोई इंफरादियत हासिल कर सकेंगे। लेकिन हिंदुस्तानी अवाम की अक्सरियत ये जानती है कि अमरीकी हिंदुस्तानी मफादात के ये काम नहीं करते हैं। उनकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के मुकाबले में, ईरान के मुकाबले में अफगानिस्तान में कुछ सहूलतें देकर हिंदुस्तान को अपने साथ सफारा किया जाए, तो हिंदुस्तानी अवाम की अक्सरियत इसे कबूल नहीं करेगी। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका अफगानिस्तान میں اپنا تسلط راست یا بالواسطہ باقی رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس پورے خطے میں اس خطرے سے دوچار ہے کہ اگر اس کا اثر و نفوذ یہاں کم ہوا تو وہ جس یونی پولار ورلڈ آرڈر یا قطبی عالمی منظر نامے کا خواہش مند ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں ہندوستان، چین، روس، ایران، ان ملکوں کا باہمی تعاون اور باہمی اشتراک کثیر قطبی دنیا کی طرف لے جائے گا، جو امریکی خارجہ پالیسی کے بنیادی مفاد کے خلاف ہے۔ وہ چاہیں گے کہ ہندوستان کو استعمال کریں، لیکن ہندوستان کی اپنی جغرافیائی اور معاشی حیثیت کے مطابق ہم یقین کرتے ہیں کہ ہماری حکومت اس حد تک امریکہ کی تابع دار نہیں ہوگی۔
جی بہت بہت شکریہ۔ یحییٰ بن زکریا صاحب۔
جی جناب۔
جناب ہمارے پاس تقریباً 3 منٹ کا وقت ہے۔ آپ نے دونوں حضرات کی گفتگو کو اگر غور سے سنا ہو تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات پر مجبور ہوا ہے، کہ طالبان کو شکست دینے میں وہ ناکام رہا ہے، جبکہ ہمارے جو شمیم فیضی صاحب ہیں اور ڈاکٹر اندرابی، دونوں کی گفتگو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب طالبان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔
دیکھیے، افغانستان میں جو عمل ہوا ہے گزشتہ 35 سال میں جہاد افغانستان کے نتیجے میں، اس نے نہ صرف یہ کہ افغانستان کو تبدیل کیا ہے بلکہ افغانستان نے پوری دنیا کو تبدیل کیا ہے۔ اور امریکہ اس بات سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہے کہ جس دن یہ بات دنیا کو معلوم ہو گئی کہ نہتے طالبان اور افغانستان نے دنیا کی سب سے بڑی جنگی قوت و طاقت امریکہ کو جنگی شکست دے دی ہے، اس کے نتیجے کے اندر نہ صرف یہ کہ خطے کا بلکہ عالمی منظرنامہ بھی مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ ابھی تو عالم اسلام میں لوگوں نے صرف چند طوفانی لہریں دیکھی ہیں، اس کے بعد پوری کی پوری جو ہے وہ دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کہنا اتنی طویل قربانیوں کے بعد کہ جو ہے وہ طالبان کو امریکہ اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس میں کامیاب ہو جائے گا، یہ بہت سیدھا سادہ جو ہے وہ مطالعہ ہے افغانستان کا۔ اور یہ لوگوں کو اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج 2012 کے اندر جو طالبان ہیں وہ آج سے 10 سال پہلے کے طالبان نہیں ہے، ان کے سامنے بہت بڑا ایک تجربہ ہو چکا ہے، وہ بہت ساری چیزیں وہ گزر چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے افغانیوں کو اور طالبان کو جس آگ کے دریا کے ساتھ گزارا ہے، بالآخر اسے امت مسلمہ کا سرمایہ بننا ہے جناب۔
جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ یحییٰ بن زکریا صاحب۔ اسی کے ساتھ ہم شمیم فیضی اور ڈاکٹر اندرابی دونوں صاحبان کے شکر گزار ہیں۔ بہرحال امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، چاہے یہ مذاکرات طالبان کو شکست دینے میں امریکہ کی ناکامی کا نتیجہ ہو یا امریکہ طالبان کو اب اپنے مفاد کے لیے طالبان سے کام لینا چاہتا ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اور ان مذاکرات میں اس کی کوشش یہ ہے کہ کابل اور اسلام آباد دونوں کو سائیڈ لائن کر دے، دونوں کو الگ رکھے اور دونوں کے اثرات سے مذاکرات کو دور رکھتے ہوئے طالبان کے ساتھ مذاکرات انجام دیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کابل اور کرزئی کی جو موجودہ حکومت ہے، اس کا مطلب ہے نارتھ الائنس افغانستان کے شمالی اتحاد اور اسلام آباد کی حکومت کو، جن کا بہت اہم رول رہا ہے افغانستان میں امریکہ کے اثر و رسوخ کے قیام میں، کیا ان کو الگ رکھ کر امریکہ اپنا مقصد پورا کر سکے گا؟ اس سلسلے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@thesahartv.ir۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔